ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم،
ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم،
سیکھے کیسے جینا ہے سیکھے چلو ادب ہم،
سیکھے کیسے جینا ہے سیکھے چلو ادب ہم، سیکھے چلو سبق ہم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کیسے ہیں آپ سب، ٹھیک ہیں؟ میں نے اپنے پیارے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روزانہ ایک واقعہ سنایا کروں گا۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے؟ ربیع النور شریف کے مہینے میں۔ تو بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، اور اس وقت ہم کیونکہ ایک مجلس کا حصہ ہے نا، ہم سب مل کر بیٹھے ہیں، ایک ساتھ جمع ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ ہم اپنے گھر کو کیسے آراستہ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ پوٹ لگاتے ہیں، مختلف پردے لگاتے ہیں، خوبصورت خوبصورت فریمز لگاتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کے ڈیکوریٹ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بڑا ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعہ سننا ہے۔ یہ واقعہ پتا ہے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے ریلیٹڈ ہے۔ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آبا و اجداد۔ مگر پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آبا و اجداد کس کو کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، فیملی ٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں آبا و اجداد۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آبا و اجداد۔ آبا و اجداد میں جو شامل ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب۔ تو سب سے پہلے تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیملی ٹری میں جو آبا و اجداد تھے وہ کون کون تھے۔ بڑے غور سے سننا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ اس باکس کے اندر سوال موجود ہو، تو بڑے غور سے اور دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد، آپ کا جو سلسلہ نسب جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ کے والد کا نام ہے عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے والد کا نام ہے قصی۔ قصی کے والد کا نام ہے کلاب۔ کلاب کے والد کا نام ہے مرہ۔ مرہ کے والد کا نام ہے کعب۔ کعب کے والد کا نام ہے لوئی۔ لوئی کے والد کا نام ہے غالب۔ غالب کے والد کا نام ہے فہر۔ فہر کے والد کا نام ہے مالک۔ مالک کے والد کا نام ہے نظر۔ نظر کے والد کا نام ہے کنانہ۔ کنانہ کے والد کا نام ہے خزیمہ۔ خزیمہ کے والد کا نام ہے مدرکہ۔ مدرکہ کے والد کا نام ہے الیاس۔ الیاس کے والد کا نام ہے مدر۔ مدر کے والد کا نام ہے نزار۔ نزار کے والد کا نام ہے معد۔ معد کے والد کا نام ہے عدنان۔ اور یہ جو عدنان تھے نا، یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کون ہیں؟ अल्लाह के नबी हैं। कौन हैं? और ये किनके बेटे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। यानी आज हमने ये सीखा, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो आबाओ अजदाद हैं, इनका कनेक्शन किनके साथ जाकर मिलता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। तो इनमें से हजरत माद के जो बेटे हैं ना, नजार, आज हमने इनके बारे में सुनना है, नजार के बारे में सुनना है, और नजार के बेटे हजरत मुदर, इनके बारे में सुनना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आबाओ अजदा के बारे में फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे पाक पुश्तों में से पाक रहमों में मुंतकिल किया, पाक रहमों में मुंतकिल किया। इससे हमें मालूम ये होता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में जितने भी थे ना, ये सारे कौन थे? ईमान वाले थे। कौन थे? ईमान वाले थे, और मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, नेक लोग थे। हजरत नजार के बारे में आता है, ये किनके बेटे हैं? हजरत माद के बेटे हैं। किनके बेटे हैं? ये हजरत माद के बेटे हैं। हजरत माद के घर जब नजार की विलादत हुई ना, तो जब इन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों में लिया तो देखा कि ये तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन हैं। और पता है कि इनके हुस्न की वजह क्या थी? इनकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर नूरे नबूवत चमक रहा था। क्या चमक रहा था? नूरे नबूवत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले पैदा फरमाया था, और फिर ये नूर मुख्तलिफ लोगों में से होता हुआ, मुख्तलिफ आबाओ अजदाद में से होता हुआ हजरत इब्राहिम में मुंतकिल हुआ, फिर हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल में मुंतकिल हुआ, फिर हजरत इस्माइल की औलाद में से हजरत अदनान में मुंतकिल हुआ, और हजरत अदनान से फिर हजरत माद में मुंतकिल हुआ, और हजरत माद में से अब किस में मुंतकिल हुआ? हजरत नजार में। किन में मुंतकिल हुआ? हजरत नजार में। जब हजरत नजार की विलादत हुई और आपके वालिद माद ने ये देखा, ये तो बड़े रोशन चेहरे वाले हैं, बड़े खूबसूरत हैं, इनके वालिद को बड़ी खुशी हुई। और जब खुशी हुई ना, तो पता है इनके वालिद साहब ने क्या किया? बहुत सारे ऊंटों को नहर किया। क्या किया? बहुत सारे ऊंटों को नहर किया, और एक बहुत बड़ी दावत की, बहुत बड़ी दावत की। उस दावत के अंदर बहुत रुपया पैसा खर्च किया, मगर पता है क्या फरमाते हैं? अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी बड़ी नेमत मुझे अता की है, इतनी ज्यादा रकम मैंने खर्च नहीं की। हालांकि बड़ी पुरतकल्लुफ दावत की थी, बहुत सारे ऊंटों को जिबा किया था, बहुत सारे ऊंट नहर किए थे, बड़ी दावत करने के बावजूद क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी बड़ी नेमत मुझे अता की है, उतना बड़ा मैंने उसका हक अदा नहीं किया, इतनी बड़ी मैंने दावत नहीं की, इतना ज्यादा रुपया पैसा खर्च नहीं किया। हमें इस बात से पता है क्या सीखने को मिलता है? हम भी आज अपने आका का जश्न मनाते हैं ना, नबी पाक का जश्न मनाते हैं, क्या कहते हैं? सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नबी की आमद। हम झंडे भी लगाते हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं, हम न्याज का भी एहतमाम करते हैं ना, तो ये कोई हम नया काम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो ये वही काम कर रहे हैं जो हमारे नबी के आबाओ अजदाद में से भी किया। जब हजरत नजार बड़े हुए, आपकी शादी हुई, तो आपके यहाँ भी बेटे की विलादत हुई, और इनके यहाँ जिस बेटे की विलादत हुई ना, उनका नाम है मुदर। मुदर जो थे ना, मुदर का मायने हुस्नो जमाल वाला, खूबसूरत तरीन। अल्लाह तबारक व ताला ने आपके चेहरे में वो नूरे नबूवत जब मुंतकिल किया, तो ये बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन, और ये हुस्नो जमाल की वजह भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर था, जो एक बार चेहरे को देखता गोया देखता ही रह जाता, उस चेहरे का दीवाना हो जाता। अब अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल भी अता किया था, और साथ साथ लहने दाऊदी भी अता की थी। क्या अता की थी? लहने दाऊदी। लहने दाऊदी पता है किसको कहते हैं? सुरीली वॉइस को। किसको कहते हैं? सुरीली वॉइस को, ब्यूटीफुल वॉइस को। आपको ब्यूटीफुल वॉइस अता की थी। अब ये जो ब्यूटीफुल वॉइस थी ना, इसका एक बड़ा खूबसूरत सा वाकया मिलता है। जब आप कुछ बड़े हुए ना, तो एक बार आप ऊंट पर सवार हुए। अब ऊंट थोड़ा सा जब आगे बढ़ा, तो आप उस ऊंट से नीचे जमीन पर तशरीफ ले आए, गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े, तो आपके हाथ पर वजन आ गया, और आपके हाथ की हड्डी जो है वो ब्रेक हो गई। क्या हो गई? टूट गई। हाँ, अब जो है वो आपके मुंह से जो आवाज निकली वो इतनी सुरीली आवाज थी कि इर्द गिर्द बहुत सारे ऊंट चर रहे थे, घास खा रहे थे बहुत सारे ऊंट। उन्होंने जब ये आवाज सुनी ना, तो अब इस आवाज के गिर्द जमा होना शुरू हो गए, आपके गिर्द इतने सारे ऊंट जमा हो गए। अच्छा, एक तरफ तो आपको बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ हो रही है, आपका हार्ट टूट गया था, दूसरी तरफ इतने सारे ऊंट इर्द गिर्द जमा हो गए, आप बड़े हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है, इतने सारे ऊंट क्यों जमा हो गए। अच्छा भाई, आप जो है वो अपने घर जाते हैं, घर पे जाकर अपने हाथ का इलाज करवाते हैं। कुछ टाइम के बाद आपने फिर से वॉइस निकाली, अपने मुंह से जब आवाज निकाली ना, तो अब आपकी आवाज सुनकर ऊंट जो है वो तेज में आ जाते, दौड़ना शुरू कर दे रहे। आपको पता है ऊंट को दौड़ाने के लिए आवाज निकाली जाती है, ये आवाज वहीं से पैदा हुई थी। हजरत मुदर का जब हाथ ब्रेक हुआ था, आपका हाथ की हड्डी जब टूटी थी, तो आपके गले से जो वॉइस निकली थी, उस आवाज पर ऊंट जो है वो करीब आ गए थे। और अब जब आप आवाज निकालते थे, कोई कलाम करते थे, कोई गुफ्तगू करते थे, तो ऊंट जो है ना वो दौड़ना शुरू कर देते थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुदर को इतनी खूबसूरत और सुरीली आवाज अता की थी। अच्छा, हजरत मुदर के तीन और भाई थे, उनका नाम था रबी, अय्याद और अनमार। हजरत नजार के इंतकाल का जब वक्त करीब हुआ, तो आपने फैसला किया कि मैं अपनी जायदाद जो अल्लाह ने मुझे अता की है, वो मैं अपने चारों बेटों में बराबर बराबर तकसीम कर दूं, ताकि मेरे मरने के बाद ये भाइयों के अंदर कोई रंजिश, कोई कलेश पैदा ना हो। गोया इन्होंने अपने सारे चारों बेटों को बुलाया, मुदर भी आ गए, रबी भी आ गए, अय्याद भी आ गए, अनमार भी आ गए। अब तकसीम कारी कर दी कि फुला प्रॉपर्टी आप ले लीजिएगा, उसका सामान आप ले लीजिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी आप ले लीजिएगा, उसका सामान आप ले लीजिएगा। मगर साथ ही साथ कहा कि ये मेरा तो फैसला है, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर तुम चारों भाइयों के दरमियान कोई डिस्ट्रीब्यूट पैदा हो जाए, आपस के अंदर आपको लगे कि नहीं ये फैसला दुरुस्त नहीं है, तो आप लोग एक काम कर लेना, नजरान चले जाना, और नजरान में एक शख्स है जिसका नाम है अफआ जुरहमी, उसके पास चले जाना, वो बहुत जहीन है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत जहानत अता की है, लिहाजा तुम उनके पास चले जाना, वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। अब जनाब कुछ टाइम के बाद नजार ने वसीयत कर दी बेटों को, चारों को बुलाकर। कुछ टाइम के बाद वालिद का इंतकाल हो गया, नजार का इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ तो चारों बेटों ने उनकी तजदीदो तदफीन का इंतजाम किया, उनको तदफीन कर दी गई। कुछ टाइम के बाद आपस में भाइयों ने फैसला किया कि आओ वालिद की जो विरासत है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तकसीम करते हैं। अब जब तकसीम का मामला आया ना, तो चारों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट पैदा हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ये जायदाद थोड़ी कम लग रही है, ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। गोया आपस में इख्तलाफ हो गया। अब ये इख्तलाफ हुआ तो वाली साहब ने पहले ही मशवरा दिया था कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो कहां चले जाना, नजरान चले जाना। कहां चले जाना, नजरान चले जाना। और किन से मुलाकात कर लेना, अफआ जुरहमी से। किन से मुलाकात कर लेना, अफआ जुरहमी से। अब जनाब इन चारों भाइयों ने फैसला किया कि चूंकि हमारे आपस के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया है, विरासत की तकसीम में इख्तलाफ पैदा हो गया है, तो चलो चलते हैं, नजरान चलते हैं और अफआ जुरहमी से मुलाकात करते हैं और उसके के साथ बैठकर हम अपना फैसला करवा लेते हैं। इन भाइयों ने यह फैसला किया और सफर इख्तियार किया। अब जैसे ही सफर इख्तियार किया ना, ये सफर को चारों भाई निकले, एक साथ निकले, चलते 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 एक रास्ते पर पहुंचे। उस रास्ते में देखा कि दोनों तरफ घास उगी हुई है। क्या उगी हुई है, घास, ग्रास। ये जो आप देख रहे हैं नीचे कारपेट बिछा हुआ है, ग्रास लगी हुई है, वो बड़ी बड़ी ग्रास लगी हुई थी। अब जब ये ग्रास देखी ना, तो मुदर कहने लगे कि इस घास को ऊंट ने खाया है। वहां पर कोई ऊंट हालांकि मौजूद नहीं था, लेकिन उस घास को देखकर कहते कि इस घास को ऊंट ने खाया है। लेकिन जिस ऊंट ने खाया है ना, वो एक आंख से अंधा है। क्या है, एक आंख से अंधा है। अच्छा, रबी ने जब देखा, उस घास की तरफ देखा और वहां पर कुछ मौजूद निशानात को देखा, तो कहने लगे कि जिस ऊंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो ऊंट तो एक टांग से लंगड़ा भी है। अच्छा, अय्याद ने सुना तो अय्याद ने कहा कि ना सिर्फ अंधा और लंगड़ा है, बल्कि इसकी तो दुम भी कटी हुई है। अनमार ने जब सारे सुनहरे को देखा तो कहने लगे कि वो तो भागा हुआ ऊंट है। हालांकि वहां पर कोई ऊंट मौजूद नहीं था, सिर्फ घास को देखकर आपस में सारे भाई तबसरा कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इन चारों भाइयों ने आपस में ये डिस्कस की और आगे बढ़े। जब थोड़ा आगे बढ़े तो एक शख्स को देखा, वो कजावा लिए घूम रहा है। कजावा पता है किसको कहते हैं? सीट को कहते हैं। जो आपने कभी कैमल राइड की है? हाँ, कैमल पर बैठने के लिए एक सीट लगती है, आपने देखी है? उस सीट को कहते हैं कजावा। क्या कहते हैं? कजावा लिए घूम रहा है। अब जनाब वो जो कजावा लिए शख्स घूम रहा था ना, बड़ा परेशान, बड़ा जिसे कहा जाए कि डिस्टर्ब था। कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी आगे कभी पीछे, किसी को ढूंढ रहा था, किसी की तलाश कर रहा था। जैसे ही शख्स ने देखा कि ये चार लोग आ रहे हैं, तो कहने लगा, ए मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, सुनो, आपने किसी ऊंट को देखा है? अब जब ये ऊंट वाले ने कहा ना कि ऊंट को देखा है, तो हजरत मुदर कहने लगे, क्या तुम्हारा ऊंट अंधा है? वो कजावे वाला कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऊंट एक आंख से अंधा है। अच्छा, रबी ने कहा, क्या तुम्हारा ऊंट लंगड़ा भी है? अब ऊंट वाले को तो खुशी होने लगी कि हो ना हो ऊंट इन लोगों के पास है। कहने लगा, हाँ जनाब, मेरा ऊंट तो एक टांग से लंगड़ा भी है। अच्छा, अय्याद ने कहा, क्या तुम्हारे ऊंट की पूंछ भी कटी हुई है, दुम कटी हुई है? ऊंट वाला खुशी से उछलने लगा, बिल्कुल जनाब, मेरे ऊंट की दुम भी कटी हुई है, अंधा भी है, लंगड़ा भी है, दुम भी कटी हुई है। अब अनवार ने कहा, तुम्हारा ऊंट भाग गया है? तो वो कहने लगा, बिल्कुल जनाब, मेरा ऊंट भाग भी गया है, लाओ जल्दी से मेरा ऊंट कहां पर है, मुझे ऊंट दो। अब इन चारों भाइयों ने कहा, ऊंट हमारे पास थोड़ी है, ऊंट हमारे पास नहीं है, हमने तो सिर्फ ऐसे ही बात कर दी। अब ऊंट वाला कहने लगा, नहीं, हो ना हो ऊंट आप लोगों के पास है, मुझे मेरा ऊंट दो भाई। आप लोगों ने निशानियां बताइए, निशानियां कौन बता सकता है? जिसने कोई चीज देखी हो, है भाई, जिसने कोई चीज देखी होगी तो ही निशानी पता होगी ना। अब जब आप बता रहे हो कि ऊंट अंधा भी है, लंगड़ा भी है, दुम भी कटी हुई है, भागा हुआ भी है, इसका मतलब है हो ना हो ऊंट आप लोगों के पास है, मुझे मेरा ऊंट वापस करो। अब इन चारों ने कहा, देखो भाई, हम तो खुद अपने मसले के लिए घर से निकले हुए हैं, हम तो आपस में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था विरासत के अंदर, हम तो खुद अपना फैसला करवाने के लिए घर से निकले हैं, तुम कहां हमारे पीछे लग रहे हो कि मेरा ऊंट वापस करो? हमने तो एक घास देखी थी, उस घास को देखकर हमने तबसरा कर दिया था, हमारे पास कोई ऊंट वूट नहीं है तुम्हारा। अब उस कजावे वाले ने, ऊंट वाले ने कहा, नहीं, मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरा ऊंट वापस दो, वरना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, इन चारों ने कहा, चलो भाई, चलते हो तो साथ चलो, हमारे पास कोई ऊंट वूट नहीं है। अच्छा जनाब, ये ऊंट वाला इन चारों के साथ अब नजरान पहुंच गया। कहां पहुंच गया? नजरान पहुंच गया। अब जब नजरान पहुंचा, तो इन्होंने अफआ जुरहमी को तलाश किया, अफआ जुरहमी को तलाश किया। अफआ जुरहमी के पास जब पहुंचे, तो सबसे पहले ऊंट वाला खड़ा हो गया, कहने लगा, सबसे पहला मेरा फैसला होगा, इन चारों भाइयों के पास मेरा ऊंट है, ये मेरा ऊंट नहीं दे रहे। तो अफआ जुरहमी ने पूछा कि मैटर क्या है, माजरा क्या है, जरा सांस तो लो, जरा मुझे समझने तो दो भाई, ऐसे ही आप शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ऊंट वाला कहने लगा, नहीं जनाब, इन लोगों ने वही निशानियां बताई है जो मेरे ऊंट में मौजूद है, मगर ये मेरा ऊंट नहीं दे रहे। अब अफआ जुरहमी ने पूछा, अच्छा भाई, आप ये चारों बताएं कि क्या आपने कोई ऊंट वाले को निशानियां बताई है? तो कहा, बिल्कुल बताइए। बोला, क्या बताया है? तो मुदर ने कहा कि मैंने कहा कि ऊंट तुम्हारा एक आंख से अंधा है। तो ऊंट वाले ने कहा, जनाब बिल्कुल, मेरा ऊंट एक आंख से अंधा है। रबी ने कहा कि मैंने इससे पूछा, तुम्हारा ऊंट लंगड़ा है? तो ऊंट वाले ने कहा, बिल्कुल, मेरा ऊंट एक टांग से लंगड़ा है। अच्छा, अय्याद ने पूछा कि तुम्हारा ऊंट, उसकी दुम कटी हुई है? तो ऊंट वाले ने कहा कि बिल्कुल, मेरी ऊंट की दुम कटी हुई है। अनमार ने कहा कि तुम्हारा ऊंट भागा हुआ है? तो ये उसने कहा कि बिल्कुल, मेरा ऊंट भागा हुआ है। ये चारों निशानियां हम चारों ने पूछी, ऊंट वाले ने बता दिया। अब अफआ जुरहमी जो था, कहने लगा कि जब तुम लोगों को पता है कि ऊंट अंधा भी है, लंगड़ा भी है, है उसकी दुम भी कटी हुई है, वो भागा हुआ भी है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ऊंट आप लोगों के पास है, वरना बताओ कि आप लोगों को कैसे पता चला कि ऊंट अंधा है, लंगड़ा है, दुम कटी हुई है, आप लोगों को कैसे पता चला? तो कहा कि भाई देखो, मसला ये है कि हम जब अपने घर से निकले और एक रास्ते पर पहुंचे, तो हमने देखा कि दोनों तरफ रास्ते के घास उगी हुई है, राइट साइड पे भी ग्रास लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे भी ग्रास लगी हुई है, लेकिन राइट साइड वाली जो ग्रास थी वो खाई हुई थी, वो चरी हुई थी, और लेफ्ट साइड वाली ग्रास वो चरी हुई नहीं थी। लिहाजा मैंने समझ लिया कि जिस ऊंट ने इस घास को खाया है वो एक आंख से अंधा है। क्या है? एक आंख से अंधा है। देखें, आप भी देखें, अल्लाह ने हमें दो दो आंखें दी है ना, आप अपनी राइट साइड वाली आंख पे हाथ रखें, राइट साइड दिखना बंद हो गया, अब लेफ्ट साइड वाली आंख पे हाथ रखें, हाँ लेफ्ट साइड से दिखना बंद हो गया, तो कहा कि मैंने इसलिए पहचाना कि ऊंट अंधा है क्योंकि घास सिर्फ एक साइड से खाई हुई थी। अच्छा जनाब, अफा जुरमी ने कहा चलो ये बात तो समझ आती है, आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊंट जो है वो लंगड़ा है। तो रबी ने जवाब दिया कि मैंने जब गौर से देखा तो वहां पर पांव के निशान मौजूद थे, लेकिन एक पांव का निशान वो पूरा मौजूद नहीं था बल्कि थोड़ा सा मौजूद था, लिहाजा मैंने रियलाइज कर लिया कि ये ऊंट लंगड़ा है। जमीन पर जब चलते हैं, गीली जमीन पर जब चलते हैं तो पैर के निशान हो जाते हैं ना, तो तीन पैर के तो निशान बिल्कुल सलामत थे, एक पैर का निशान उसमें वो सलामत नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा निशान था, लिहाजा मैंने समझ लिया कि जनाब ये ऊंट कौन है, लंगड़ा है। अच्छा ये दोनों की बात तो समझ आ गई कि इसको इन दोनों को पता लग गया। अब अयाज से पूछा गया, अयाज भाई आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊंट जो है उसकी दुम कटी हुई है। तो कहा मैं भी बताता हूं जरा तसल्ली रखो। हुआ कुछ यूं था कि जब मैंने गौर से उस जगह को देखा तो उस जगह पर बहुत सारा गोबर, मैंगनिया, ऊंट गोबर करता है ना, तो मैंगनिया पड़ी हुई थी, लेकिन जो मैंगनिया पड़ी हुई थी ना ये सही सलामत थी, इसलिए मुझे आइडिया हो गया कि ये इस ऊंट की दुम कटी हुई है, हैं? जो मैंगनिया सही सलामत थी इसलिए पता चल गया कि ये ऊंट की दुम कटी हुई है। अच्छा तीन सवाल के तो जवाब दुरुस्त मिल गए, अंधा कैसे है पता कैसे चला, लंगड़ा कैसे है कैसे पता चला, जनाब उसकी दुम कटी हुई है कैसे पता चला। अब अनमार की बारी आई, आप बताओ भाई आपको कैसे पता चला कि ये ऊंट भागा हुआ है। कहा दरअसल मैंने जब घास को देखा तो घास जगह जगह से खाई हुई थी, थोड़ी जगह से खाई हुई थी, फिर थोड़ी दूर जाकर एक जगह से खाई हुई थी, फिर और दूर जाकर थोड़ी जगह से खाई हुई थी, इसका मतलब मैंने समझ लिया कि ये ऊंट भागा हुआ है, तो ही उसने इत्मीनान के साथ एक जगह से नहीं खाया। अब जनाब जब ये अफ़ा जुरमी ने सारे जवाब सुने ना, तो उस कजावे वाले को ऊंट वाले को कह दिया चलो भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, तुम्हारा ऊंट इन लोगों के पास नहीं है, जाकर तलाश करो जहां पर तुमने अपना ऊंट खोया था, इनके पास तुम्हारा ऊंट नहीं है। लेकिन दूसरे ही मायनों में ये बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास जो ये चारों लोग आए बड़े अकलमंद हैं, बड़े जहीन हैं, बड़े समझदार हैं। अच्छा अब इन चारों की तरफ रुक किया और पूछा कि भाई आप लोग कौन है। तो कहा कि मेरा नाम मुदर है, मेरा नाम अयाद है, मेरा नाम रबी है, मेरा नाम अनमार है, और हम लोग नजार के बेटे हैं। तो अच्छा बताओ ये क्यों आए हो आप मेरे पास। तो कहा हमारा आपस में डिस्प्यूट हो गया था और हमारे वालिद ने हमें कहा था कि अगर तुम्हारा डिस्प्यूट हो जाए तो नजरान चले जाना, अफ़ा जुरमी से मुलाकात कर लेना, वो बड़ा समझदार है, तुम्हारा फैसला करवा देगा। तो अब अफ़ा जुरमी कहने लगा कि भाई आप लोग तो बहुत ज्यादा ज़हीन हो, आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हो, सबसे पहले मैं तुम्हारा मसला भी सुनूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरी दावत कबूल करनी होगी। क्या कबूल करनी होगी? खुश हो गया ना, इतने ज़हीन समझदार लोग आए थे, तो कहने लगा पहले तुम्हें मेरी दावत कबूल करनी होगी। अच्छा उन चारों भाइयों ने कहा ठीक है आप दावत खिला दो। अब जनाब बड़ी पुर तकल्लुफ दावत का एहतमाम हुआ, बकरा खिलाया गया, अंगूर का शरबत पिलाया गया, बड़ी जबरदस्त पुर तकल्लुफ दावत हुई। अब जैसे ही दावत खत्म हुई तो मुदर कहने लगे कि बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत तरीन आपने हमें अंगूर का शरबत पिलाया है, और आज से पहले मैंने ऐसा शानदार शरबत नहीं पिया था, मगर एक काश कि ये अंगूर जिससे शरबत बनाया गया था ये अंगूर किसी कब्र पर ना उगे होते। अब जिसने दावत की थी अफ़ा जुरमी ने, वो हैरान परेशान, उसके तो गोया तोते उड़ गए कि ये क्या मैटर है, ये मुझे नहीं पता कि ये अंगूर कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर ये उगे हैं, इनको पता है ये कह रहे कि किसी कब्र पर ना उगे होते, वो हैरान परेशान। अच्छा अब जनाब दूसरे भाई ने कहा कि आपने जो हमें गोश्त खिलाया है बड़ा जूसीला और बड़ा सॉफ्ट, बड़ा खूबसूरत तरीन गोश्त था, मगर एक काश ये बकरी जो आपने हमें खिलाई है इसकी परवरिश कुत्ते के दूध के साथ ना हुई होती। अब अफ़ा जुरमी के तो जिसे कहा जाए ना तोते के भी तोते उड़ गए हैं, हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। अब अफ़ा जुरमी ने अपने खानसामे को बुलाया, बावर्ची को बुलाया, और उसे पूछा बताओ भाई ये जो तुमने जूस हमें पिलाया है इसके अंगूर कहाँ से आए थे। बावर्ची ने जवाब दिया कि मैटर ये है कि जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ था तो मैंने तुम्हारे वालिद की कब्र पर एक अंगूर की बेल लगा दी थी, और ये अंगूर उसी बेल में से मैंने तोड़े हैं, तुम्हारे वालिद की कब्र पर जो बेल लगी हुई अंगूर की वही से मैंने तोड़े हैं। अब जनाब अफ़ा जुरमी बहुत ज्यादा परेशान कि ये लोग कितने ज़हीन हैं, कितने समझदार हैं। अच्छा अब इसने पूछा कि अच्छा ये बताओ अंगूर तो समझ में आता है, ये बकरी कहाँ से लाए थे? तो कहने लगा बकरी तो मेरे चरवाहे से ली है। कहा जाओ चरवाहे को बुला कर लेकर आओ। अब जनाब जब चरवाहे को लाया गया तो चरवाया आया, पूछा बताओ कि ये बकरी की परवरिश कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है? तो बकरी के मालिक ने, चरवाहे ने कहा कि जब ये बकरी पैदा हुई थी तो इसकी माँ का फौरन से इंतकाल हो गया था, इसकी माँ वो मर गई थी। अब जैसे ही इसकी माँ मरी तो ये बकरी को मैंने पालना था, लिहाजा मैंने जब देखा तो मेरे घर के बाहर कुत्ते ने बच्चे दिए हुए थे, तो गोया मैंने इस बकरी को कुत्ते के बच्चों के साथ डाल दिया। ये बकरी जो है ये कुत्ते का दूध पी पी कर बड़ी हुई है। अब जनाब अफवाह जरमी तो जिसे कहा जाए कि बहुत ज्यादा हैरान परेशान कि ये कितने जहीन तरीन लोग हैं, कितने समझदार हैं। तो प्यारे बच्चों हमें इस वाक्य से सीखने को क्या मिला कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आबाओ अजदाद हैं वो कितने जहीन और कितने समझदार लोग थे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैंने यह हदीस मुबारक का खुलासा पहले भी बयान किया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे पाक पुश्तों में से पाक रहमों में मुंतकिल किया। इससे हमें सीखने को क्या मिला कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद ये सब कौन थे? ईमान वाले थे, नेक लोग थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। अल्लाह तबारक व ताला हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी इल्मे दीन की नेमत अता करे और नबी पाक और आपके आबाओ अजदाद से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा प्यारे बच्चों आपने ये वाकया सुना, कैसा लगा आपको वाकया? बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये वाकया आपको कितना याद है उसका भी हमने इम्तिहान लेना है। हमारे सिलसिले में अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का जिसका नाम है सवालात का खजाना। क्या नाम है? और ये खजाना छुपा हुआ है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ऐसे मुख्तलिफ चार बॉक्सेस यहाँ पर हमने छुपाए हुए हैं। इस बॉक्स के अंदर सवालात मौजूद हैं, तो ये सवालात का खजाना आप लोगों ने तलाश करना है। ठीक है, आपके पास दो मिनट का टाइम होगा, दो मिनट के अंदर आपने ये छुपे हुए बॉक्सेस तलाश करने हैं और जो बच्चा ये बॉक्स फाइंड कर लेगा फिर हम उससे सवाल करेंगे। सवाल क्या होगा? ये इस बॉक्स के अंदर जो पर्ची मौजूद होगी उसमें लिखा हुआ है। आप सब रेडी हैं? ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब।
सीखें चलो सबक हम, सीखें चलो सबक हम।
ठीक है जनाब, अरे भाई देखे एक दूसरे को धक्का ना लगे, आराम से आराम से आराम से, ध्यान रखे कोई चीज गिर ना जाए बेटा। शाबाश, लेकिन जल्दी कीजिएगा आपका वक्त गुजर रहा है।
सीखें कैसे
जल्दी
जीना है,
शाबाश शाबाश।
अदब हम
सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम,
शाबाश
चलो सबक हम। हमको तो सारे अंबिया से प्यार है,
शाबाश, लेकिन जल्दी कीजिएगा आपका वक्त गुजर रहा है।
पार है हमको तो सारे,
शाबाश शाबाश जी, जरा ध्यान दीजिए, देखें कहीं किसी पत्थर के नीचे रखा हुआ होगा।
इन प्यारे वाकयात से सीखें चलो सबक हम,
इन प्यारे वाकयात से सीखें चलो सबक हम,
सीखें कैसे जीना है,
शाबाश शाबाश,
चलो अदब हम,
सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम, सीखें चलो सबक हम।
जिसको मिल जाए वो आ जाए, आगे आ जाए, जिसको मिल जाए वो आगे आ जाए।
चलो सबक हम, इन प्यारे वाकयात से सीखें चलो सबक हम,
इन प्यारे वाकयात से
शाबाश, जिसको मिल जाए वो आगे आ जाए।
सीखें कैसे जीना
जी
है,
एक मिनट तीस सेकंड गुजर चुके हैं, जरा जल्दी करें, शाबाश।
कैसे जीना है,
जिसको मिलता रहे वो आगे आ जाए, शाबाश, ध्यान रखें बेटा एक दूसरे को धक्का ना दें। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह आपने भी फाइंड कर लिया, वेरी गुड शाबाश। आ जाए बेटा जिसको मिल जाए वो आगे आ जाए, ईजान भाई ने भी तलाश कर लिया माशाल्लाह, आ जाए आ जाए। बस एक और बॉक्स रह गया आखिरी, चलें जनाब वो भी मिल गया, सारे बच्चे इधर आ जाएंगे। अब तलाश करना छोड़ दें, टाइम भी वैसे खत्म हो गया, सारे बच्चे आ जाए आराम से, ध्यान से ध्यान से, शाबाश, आ जाए सारे सारे बच्चे यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सिलसिले में आप तलाश कर लीजिएगा, ठीक है? बैठे आराम से, शाबाश, अपनी अपनी जगह पर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए बेटा, सारे अपनी जगह पर बैठेंगे, शाबाश। चले जनाब, आप चारों ने बॉक्स तलाश किए, चले दिखाएं अपना बॉक्स। अच्छा, जो बॉक्स के अंदर से सवाल निकलेगा उसका आपने देना होगा जवाब, और उसके अगेंस्ट में आपको दिया जाएगा तोहफा। अगर आप जवाब ना दे सके तो फिर इनमें से जिसको जवाब आता होगा ये सारे हाथ उठाएंगे, ठीक है? आप लोगों ने बोलना नहीं है, आप लोगों ने बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। ये इनकी मर्जी होगी, अगर ये जवाब दे सकेंगे तो ठीक है, अगर नहीं दे सकेंगे तो ये जिनको कहेंगे फिर उनसे हम जवाब लेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आसान सा सवाल निकल आए, अल्लाहु अकबर। चलें, आपके बॉक्स के अंदर से जो सवाल निकला है आपने बताना है कि फैसला करने के लिए जिस शख्स के पास गए थे उनका नाम क्या था। पहले आप अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम मोहम्मद ईजान।
मोहम्मद ईजान है, ठीक है। मोहम्मद ईजान भाई किसके पास फैसला करवाने के लिए गए थे चारों भाई? जल्दी जवाब देंगे, नहीं आ रहा जवाब, नहीं आ रहा, हार मान ली। चलो फिर किन से जवाब लेना है, हाथ खड़ा करेंगे, सिर्फ पार्टनरी कर लो किसी के साथ, आधा आधा कर लेना, ठीक है? पूछो, बताओ किससे किससे लेना है जवाब, जल्दी करें जल्दी करें, टाइम नहीं है। किन से जाओ जल्दी, तुमको हाथ में माइक दो, आ जाओ बेटा यहाँ पर आ जाओ। क्या नाम है आपका? उम्मे हानी। उम्मे हानी बताएं किसके पास फैसला करवाने के लिए गए थे?
अफ़आ जरहमी
के पास फैसला करवाने के लिए गए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, सब मिलकर क्या कहेंगे? जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में दरख लगा दिया जाता है, सुभान अल्लाह। चले भाई, गुड़िया को गिफ्ट देते हैं हम ये कलर पेंटिंग, चले माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब आपने बताना है कि आपके बॉक्स के अंदर क्या है, शाबाश। खोलें, दुरूद पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए जनाब सवाल निकला है कि भागे हुए ऊंट की कौन कौन सी निशानियां थी। पहले आप अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम हम्माद रजा है।
हम्माद रजा, माशाल्लाह। हम्माद रजा बताएं भाई, वो कौन कौन सी निशानियां थी?
एक आंख से अंधा था।
एक आंख से अंधा था।
एक पांव से लंगड़ा था।
एक पांव से लंगड़ा था।
पूंछ कटी हुई थी।
पूंछ कटी हुई थी।
और भाग गया था।
और भागा हुआ था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चलें भाई, हमारे भाई को हम क्या तोहफा दें? आपको हम देते हैं बहुत खूबसूरत डायरी, सब मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चले जनाब, अब खोलते हैं तीसरा बॉक्स, सवालात का खजाना, देखते हैं कि आपने क्या खजाना तलाश किया है। आपने बताना है कि किस फल के जूस के बारे में बताया गया था कि ये फल किसी कब्र पर लगाया गया था, वो फल का नाम बताना है आपने, वो फल कौन सा था। पहले आप अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम हसनैन अतारी है।
हसनैन अतारी, माशाल्लाह जी। हसनैन भाई, वो कौन सा फल था?
अंगूर का फल।
वो अंगूर थे, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चलें भाई, हम अपने बेटे को देते हैं कलर पेंसिल्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें भाई, अब बारी आती है हमारे चौथा बॉक्स, देखते हैं कि ये कौन सा सवाल का खजाना तलाश किया है और आपके लिए कौन सा सवाल निकलता है। चलें भाई, आपके लिए सवाल निकला है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से कोई तीन का नाम बता दें। पहले आप अपना नाम बताएंगे।
मेरा नाम मोहम्मद शहाब है।
ठीक है।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम।
अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चले भाई, शहाब भाई को हम देते हैं पेंसिल बॉक्स, और इसी के साथ हमारे सिलसिले का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इन प्यारे वाकयात से सीखे चलो सबक हम,
इन प्यारे वाकयात से सीखे चलो सबक हम,
सीखे कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम।
सीखे कैसे जीना है, सीखे चलो अदब हम, सीखे चलो सबक हम।